प्रथम हे पृथुयज्ञ ते मैं प्रकट अद्भुत रूप ब्रह्म राव विचारि ब्रह्म राखु नाम अनूप मान पै देवी दियो शिव आदि सूर सुस पाय कहाँ दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति सुस पाय पार वायन सुरन के पितु सहित अस्तुत कीन तासु वंश प्रसंग में भवचंद चारु नवीन भूप पृथ्वीराज दिनी तिन्हें ज्वाला देश तनय ताके चार किन्हो प्रथम आप नरेश दूसरे गुणचंद तासुत सीलचंद स्वरूप वीरचंद प्रताप पूरन अद्भुत रूप रंत भाव हमीर भूपत संग खेलत आप तासु वंश अनूप भव हरचंद अति विख्यात आगरे रही गोपचल में रहियो तासुत वीर पुत्र जन्मे सात जाके महाभट गंभीर कृष्णचंद उदार चंद जो रूप चंद सुभाई बुधचंद प्रकाश चौथो चंद भो सुखदाई देवचंद प्रबोध संतृत चंद ताको नाम भयो सप्तु नाम सूरज चंद चंद मंद निकाम सो समर कीन साही स्यो सब गए विध के लोक रहो सूरज चंद दृग ते हीन भरी वर शोक परो कूप पुकार काहू सुनी न संसार साते दिन आए जदुपति किया आप उधार दिए चश दे कहीं शिष सुनु मांग वर सोच साई हो कहीं प्रभु भगत चाहत शत्रुनाश सुभाई दूसरो ना रूप देखो देखी राधा श्याम सुनत करुणा सिंधु भारवी एवमस्तु सुधाम प्रबल दक्षिण भी प्रकूल ते शत्रु हवे है नाश अखिल बुद्धि विचार विद्यामान माने मास नाम राखे मोर सूरज दास सूर सुश्याम भय अंतर ध्यान बीते पाछली निज जाम मोहि मनसो इहे ब्रिज की बसो सुख चित थाप थपि गोसाई करी मेरी आठ मध्वे छाप विप्र है पृथुयज्ञ को भाव भूर निकाम सूर है नंद नंद जू को लयो मोल गुलाम इसके अनुसार सूरदास ब्रह्म भट्ट कुल उद्भव सिद्ध होते हैं। मिश्र बंधु इस पद को प्रक्षिप्त मानकर सूर को सारस्वत ब्राह्मण ही मानते हैं। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल का कथन है कि इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। पैराग्राफ चेंज। यद्यपि सुर सौरभ के लेखक डॉक्टर मुंशी राम शर्मा ने साहित्य लहरी वाले पद को प्रामाणिक मानकर उन्हें ब्रह्म भट्ट माना है, इसी तथ्य को मानने वाले डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार वे कदाचित ब्राह्मण नहीं थे। संभव है वे दाढ़ी जगा या ब्रह्म भट्ट हो, किंतु सुर निर्णय के लेखक द्वय श्री पारिख और मीतल ने वार्ता साहित्य के आधार पर उन्हें सारस्वत ब्राह्मण ही माना है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा के अनुसार सूरदास जी न तो भट्ट ब्राह्मण थे और न दाढ़ी या जगा जाति के थे। भट्ट ब्राह्मण होने का आधार साहित्य लहरी का पद है जो अप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है। निष्कर्षतः वार्ता साहित्य को आधार मानकर सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण ही मानना उचित है। इधर बीच अनेक ग्रंथों के प्रकाशनों द्वारा शोधार्थ स्वर्गीय किशोरीलाल गुप्त ने अनेक सुर की कल्पना की है, अतः सुर सारावली एवं साहित्य लहरी दोनों कृतियों को अष्टछापी महाकवि सूरदास की रचना न मानने का तर्क वितर्क लगभग एक शताब्दी से चली आ रही है, किंतु डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने अपने शोध प्रबंध सूरदास ब्रैकेट में 1946 ईस्वी ब्रैकेट बंद में सप्रमाण यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ये दोनों ग्रंथ अष्टछापी महाकवि सुर के नहीं है, किंतु किसकी रचना है यह भी निश्चित बता सकने में असफल रहे। आगे पुनः इस घुनाक्षर न्याय की खोज में डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन ने 1961 ईस्वी में सुर सारावली एक अप्रामाणिक रचना के द्वारा संदेह व्यक्त किया। कालांतर में इनकी सत्यता को सिद्ध करने का प्रयास करते हुए 1984 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने लिखा, इनको मैंने सिद्ध किया है कि ये ग्रंथ चंद बरदाई के वंशज के हैं। ये अकबरी दरबार के गायक रामदास के पुत्र स्वयं अकबरी दरबार के गायक सूरजदास हैं, जो गोस्वामी गोकुलनाथ के शिष्य थे। साहित्य लहरी की रचना की थी। इनका जीवन काल संवत 1590 से 1690 विक्रमी है। पैराग्राफ चेंज। सूरदास लोकमानस में कृष्ण भक्त महाकवि के रूप में विख्यात हैं, किंतु सामान्य जनता व विद्यार्थियों में अनेक सुर की कल्पना का विषय ज्ञात नहीं है, अतः सुर की महत्ता बनी रही। अतः जनमानस की आस्था श्रद्धा की अवधारणा को नहीं तोड़ना चाहिए, परंतु आलोचक एवं अध्येताओं की स्थापनाएं एवं अन्वेषण भी आवश्यक रूप से ग्राह्य है। प्रश्न संख्या 12। सुरसागर की रचना करने वाले सूरदास अष्टछापी सूरदास हैं, जिन्हें वार्ता आदि साहित्य में शाश्वत ब्राह्मण घोषित किया गया है। साहित्य लहरी के 115वें पद के अनुसार सूरदास अष्टछापी अर्थात ब्रह्म भट्ट के आदि पुरुष ही हैं, जिसे पूर्व पद 115वें से प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता रहा है। यदि माना जाए तो इन्हीं ब्रह्मराव यानी ब्रह्म भट्ट के वंश में जन्म हुए, जो विश्वविख्यात पृथ्वीराज रासो के प्रणेता व पृथ्वीराज चौहान के राजकवि, मित्र और मंत्री भी थे। कालांतर में राजा पृथ्वीराज ने उन्हें ज्वाला देश दिया और इन्हें चार पुत्र हुए। इनके अनुसार वंशावली इस प्रकार है। चंद परदाई से गुलचंद, गुलचंद से सीलचंद, सीलचंद से वीरचंद, ब्रैकेट में कालांतर में कई वंशज हुए। उसके पश्चात हरिचंद, हरिचंद से रामचंद्र, इनके सात पुत्र हुए। पहला कृष्णचंद, दूसरा उदारचंद, तीसरे रूपचंद, चौथे बुद्धचंद, पांचवें देवचंद, छठे प्रबोधचंद्र और सातवें सूरजचंद। उपर्युक्त पद के बाद बुद्धचंद से आगे का वंश वृक्ष आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में पंडित हरप्रसाद शास्त्री द्वारा चंद के वंशज से प्राप्त वंशावली को लिखा है, जो इस प्रकार है। बुद्ध चंद की पश्चात उनके दो पुत्र हुए, खेमचंद और गोविंद चंद। गोविंद चंद से जयचंद और जयचंद से तीन पुत्र हुए, मदन चंद, शिवचंद और बलदेव चंद। मदन चंद के दो पुत्र हुए, चौथ चंद और बेनी चंद। बेनी चंद के तीन पुत्र हुए, गोकुल चंद, वसुचंद और लेख चंद। गोकुल चंद के पुत्र कर्णचंद हुए, जो इनके दो पुत्र हुए, गुणगंग चंद और मोहन चंद। मोहन चंद से दो पुत्र हुए, जगन्नाथ और रामेश्वर। रामेश्वर के पुत्र गंगाधर, गंगाधर के पुत्र भगवान सिंह और भगवान सिंह के पुत्र कर्म सिंह, कर्म सिंह के पुत्र मथुरा सिंह और मथुरा सिंह के पुत्र वागो गोविंद सिंह, वागो गोविंद सिंह से मान सिंह और मान सिंह के पुत्र विजया सिंह, विजया सिंह के पुत्र आनंद राज जी और आनंद राज जी के पुत्र पांचवे, पहले असो जी, दूसरे गमान जी, तीसरे कर्णिदान, चौथे जेथमल जी और पांचवे वीरचंद जी। कर्णिदान के पुत्र जो चार हुए, जिनका दो नाम पता नहीं और दो नाम इस प्रकार है, घमंडी राम जी और बुद्धिर जी। घमंडी राम जी के पुत्र बुद्धिचंद जी हुए और बुद्धिचंद जी के पुत्र नानू राम जी हुए। यदि हम सूरदास को अष्टछापी सूरदास न मानकर चंद के वंशज अकबर के दरबारी कवि के साथ रामदास के पुत्र को सूरदास ब्रह्म भट्ट या सूरजदास मान लेते हैं, तो सुर सरावली के आधार पर यह सिद्ध नहीं हो पाएगा कि श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे, क्योंकि इसमें आया है श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो, पद संख्या 1102। इसलिए कि वल्लभाचार्य के समय उनसे दीक्षित महाकवि सूरदास अष्टछापी ही थे और अकेले ही थे, अतः सरावली की कथा वस्तु से दोनों का अंतर बता पाना दुष्कर ही नहीं असंभव भी है। पैराग्राफ चेंज। लौकिक परंपरा अनुसार सुर अंधे व्यक्ति को कहते हैं, अतः सामान्य रूप से अंधा व्यक्ति प्राय गवैया ही होता है और ऐसे लोग प्राय भक्ति के गीत गाते हैं, जिन्हें आदरवश लोग उन्हें सूरदास कहते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा लेते समय सूरदास जी अंधे थे, यह प्रमाण सिद्ध है, क्योंकि आचार्य जी ने उसी समय उनसे कहा था कि सुर हवे काहे घिघियात है, कछु भगवत भजन करे। अतः यहाँ विचारणीय यह है कि सूरदास जी जन्मांध थे या कुछ आयु बीतने के उपरांत नेत्र विहीन हुए थे। इस संदर्भ में पंडित सीताराम चतुर्वेदी सूरदास के प्रमाणित चित्रों और हरिराय जी की वक्तव्य साक्षी मानते हुए उन्हें जन्मांध अंधा बताया है। अंततः हम यह मानने के लिए बाध्य है कि वे जन्मांध थे। प्रश्न संख्या 15। कवि का नाम सूरदास प्रसिद्ध और परंपरागत है, यद्यपि सूर सूरदास का संक्षिप्त रूप है। जब वल्लभाचार्य जी से सूरदास जी की प्रथम भेंट हुई, तब सूर श्लिष्ट अर्थ में लेकर उन्होंने यही कहा कि सूर हवे के काहे घिघियात है। श्री यदुनाथ जी ब्रैकेट में सारस्वत सूरदासो अनुगृहीतः वल्लभ दिग्विजय ब्रैकेट बंद तथा श्रीनाथ भट्ट जन्मांधो सूरदासो अभूत ब्रैकेट बंद। संस्कृत वार्ता वणिमाला में भी इन्हें सूरदास ही कहा गया है। उपलिखित दोनों नामों के अतिरिक्त सूरजदास, सूरज और सूरश्याम नाम की छाप उनके सुरसरावली कृति में मिलती है, जिसको स्वतंत्र विस्तार पूर्वक छठे अध्याय में वर्णित किया गया है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने सूर सुजान नाम भी दिया है और उसके अतिरिक्त सूरदास तथा सूरजदास नामों को प्रमाणित माना है। साहित्य लहरी के वंश वृक्ष वाले 115वें पद में कवि ने अपने नाम के विषय में लिखा है, नाम राखे मोर सूरजदास सुर सुश्याम। यहाँ सुश्याम की दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। पहला, उस श्याम सुंदर अथवा उस घन श्याम, और दूसरा, सुश्याम में सु को पादपुत्यर्थ मानकर सूरदास का ही तीसरा नाम सूर श्याम माना जाने लगा। इस संदर्भ में प्रभु दयाल मीतल संभावना व्यक्त करते हैं कि सूर श्याम नाम के कोई और कवि थे। सूरज और सूरजदास के विषय में भी यही बात कही गई है, और फिर भी इस विषय में अभी तक निर्णयात्मक रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पूर्व सूरदास ने किससे कहा और किन किन विषयों की शिक्षा प्राप्त की थी, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है, किंतु उनके पांडित्य का सर्वमान्य और ज्वलंत प्रमाण सुर सागर ही है। यह उनके संगीत शास्त्र के अगाध ज्ञान के अतिरिक्त काव्य शास्त्र, पुराण, ज्योतिष, तर्क शास्त्र, दर्शन, ब्रजभाषा आदि के पूर्ण पांडित्य का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उनका शब्द भंडार विशाल था। वे अवधी, पंजाबी, गुजराती, फारसी आदि भाषाओं में भी निष्प्राण जान पड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज। भक्ति संगीत और हिंदी काव्य में उन्होंने जो काम किया उस ओर विद्वानों का ध्यान नहीं जाता। सुरपूर्व साहित्य में ब्रजभाषा का प्रयोग तो एक सहस्राब्दी से अधिक पहले ही होता आ रहा है और प्रभुत मात्रा में, परंतु ब्रजभाषा को खरा, शुद्ध, प्रांजल और प्रभावपूर्ण रूप मिला सुर की भाषा में ही। सूरदास ने अपभ्रंश के प्रयोगों को छानकर उसे सुष्ठु काव्यमयी बना दिया, उसे ऐसा परिमार्जित रूप दिया जिसे काव्य रसिकों के कंठ को मधुरिमा से सराबोर कर दिया, और वही आगे चलकर रीतिकाल की कोमल कांत पदावली के रूप में उभर कर फारसी की जंबादानी का दम भरने को भी मंत्रमुग्ध करने में समर्थ हुई। भाषा का यह परिष्करण सूरदास के विशद व्याकरण, प्रतिभा, भाषा संस्कार, कोश ज्ञान, सौंदर्य बोध का बहुत बड़ा प्रमाण है। पृष्ठ संख्या 16। सूरदास ने ब्रजभाषा को वह प्रांजल रूप दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी कहना पड़ा, चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों के श्रृंगार और वासल की उक्तियां सुर की जूठी सी जान पड़ती है। अतः सुर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूरदास के शिक्षा गुरु कौन थे इसका तो पता नहीं है, पर वार्ता साहित्य से स्पष्ट है कि उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। श्री हरि राम जी की भाव प्रकाश टीका के अनुसार विवरण मिलता है कि सूरजदास यमुना के गऊ घाट पर चले गए, जो आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता है। वहीं उनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई। 84 पेशवन की वार्ता के अनुसार ज्ञात होता है कि महाप्रभु उस समय दक्षिण भारत और काशी में मायावाद का खंडन तथा भक्ति मार्ग की स्थापना की थी, जिस समय वे गऊ घाट पर रुके थे। सूरदास ने वहीं उनका दर्शन किया था। वल्लभ दिग्विजय में भी इसी तथ्य का उल्लेख है। आचार्य जी ने भगवत लीला वर्णन का जो सुझाव सूर को दिया था, तब आचार्य जी ने उन्हें दीक्षा दी और लीला का ज्ञान कराया।